बहुत सुंदर गीत सुना। ये जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। चिंतन को श्रेष्ठ कर दिया, अंतःकरण को शुद्ध बना दिया। आपकी याद कैसी है? परमानंद दायिनी है। निकलता है ऐसे हृदय से तो भगवान की याद परमानंद प्रदान करती है। और आज के वरदान में भी बाबा ने यही कहा। क्या था वरदान, किसी को याद है? निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। तो आज का ये वरदान ही अभी के विषय की प्रेरणा रहा। इस सेशन का टॉपिक क्या है? विकारों को विदाई देने वाले नारद जब स्वयं हुए विकारों के वशीभूत। विदाई दे चुकी है, फिर भी विकारों के वशीभूत हो गए। और उसका एग्जाम्पल हमारे पास नारद का ही है, जिसको कल ही बाबा ने याद किया था और स्पष्ट कहा था। नारद की भी एक विशेषता बताई थी, झांझ बजाने वाले नारद। और हमने कहा ये तो झांझरी मंगला वाले आए हैं। तो फिर हमको लगा यही टॉपिक ठीक रहेगा। तो हमने इसलिए ये वाला टॉपिक उठाया कि नारद भी झांझ बजाने वाले और आए हुए भाई बहने कौन है, झांझरी मंगला वाले। और हम आए हैं योग तपस्या भट्टी करने, अर्थात ही अपने सर्व विकारों की आहुति डालने, तभी हम शक्ति स्वरूप बन सकेंगे, पूज्य स्वरूप बनेंगे। आज दुनिया के अंदर भी अगर किसका सम्मान होता है, अगर किसी को पूजनीय माना जाता है, उसका आधार होता है उसकी पवित्रता। उसकी आयु नहीं देखी जाती है, लेकिन उसकी पवित्रता, उसकी दिव्यता को देखकर, उम्र में भले ही वो छोटा होगा, लेकिन बड़े बड़े उसके आगे नमन करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसका वंदन करते हैं, उसके बताई हुई बातों का श्रवण करते हैं। कारण पवित्रता है, दिव्यता है, लोक हित की भावना है, स्वार्थ से परे है, तब जाकर पूज्य बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप ने सभी बच्चों को, एक या दो को, तीन या चार को नहीं, सभी बच्चों को बाबा से ये दो वरदान प्राप्त होते हैं। कौन से? योगी भव, पवित्र भव। लेकिन फिर उसमें अंडरलाइन कराया, कौन से योगी? दो घंटे वाले योगी, चार घंटे वाले योगी नहीं, निरंतर योगी। और पवित्रता में भी अंडरलाइन कराया, कभी कभी के पवित्र नहीं, लेकिन सदा पवित्र। और जिसके अंतर्गत क्या आएगा? सर्व विकारों की विदाई। सिर्फ विकारों की नहीं, सर्व विकारों की विदाई। ऐसे नहीं कभी काम विकार आ जाए, कभी मोह विकार आ जाए, कभी लोभ विकार आ जाए, तो फिर उसको पवित्र नहीं कह सकते हैं। सर्व विकारों की, तब जाकर हम शक्ति स्वरूप और पूज्य स्वरूप बन सकते हैं। तो पहली बात योगी भव की। और बाबा ने परिभाषा दी है योग की भी, चार पौड़ियां हैं, सीढ़ियां होती है ना, पौड़ियां माना सीढ़ियां होती है, कि पहले हम वियोगी हैं, है ना। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, तो जब तक ब्राह्मण नहीं थे वियोगी थे ना, खुद से कनेक्शन था, जब खुद से ही नहीं तो खुद के पिता से कैसे होगा। हाँ, इसी को मैं समझते थे और इसी को मेरा समझते थे। तो जो वास्तव में स्व आत्मा है उससे तो हमारा कनेक्शन टूटा हुआ था। तो वियोगी की स्टेज, तो जब हम शुद्र होते हैं माना वियोगी होते हैं, तो पहली स्टेज होती है। फिर हम ब्राह्मण बनते हैं तो ज्ञान मिलता है, स्वयं के साथ कनेक्शन होता है, तो कहा योगी स्टेज। कनेक्शन होना माना योगी, और स्वयं से योग हुआ तो फिर उससे योग होना सहज हो जाता है, और उससे भी योग हो जाता है तो फिर उसके कार्य में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्राप्तियां हो रही है, स्व से कनेक्ट हुए, उससे कनेक्ट हुए, जीवन में परिवर्तन महसूस हो रहा है। सबसे पहला परिवर्तन तो निश्चिंत बना, जो भय से, टेंशन से, चिंताओं से ग्रसित रहते थे वो सब उतर गया, सब दे दिया बाप को, सब जिम्मेवारी उसने ले ली और हम हो गए हल्के। तो फिर सहयोग करना, बाबा के कार्य में सहयोग करना आरंभ करते हैं। उसको कहेंगे सहयोगी। और लास्ट बाबा ने कहा कि सहयोग तो करना शुरू कर दिया, लेकिन सहयोग करने के बाद अब विकारों के आने की मार्जिन खड़ी हो जाती है। मैंने इतना किया है यज्ञ के लिए, मैंने ये सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए इतना कुछ किया है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरे जिज्ञासु है। वैरायटी तरीकों से विकार आते हैं। और इसलिए लास्ट स्टेज बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी, जो किया उसका भी त्याग। भाई पहले तो त्याग किया बॉडी कॉन्शियस का, लेकिन वापस बॉडी कॉन्शियस में आ रहे हम। मैंने किया माना क्या, अगर मुझे सचमुच आत्मस्मृति है, सचमुच परमात्म स्मृति है, तो मैंने किया वाली बात नहीं आएगी। जो गीत सुना, क्या सुना, क्या था गीत, प्रभु का प्रसाद है, लेकिन हम चलते चलते उसको भूल जाते हैं, क्योंकि 63 जन्मों का वो संस्कार है, और प्रभु के प्रसाद को भूलकर समझने लगते हैं मैंने किया है। आपको पता है क्या, जब तक मैं नहीं था सेंटर की क्या दुर्दशा थी, एक या दो स्टूडेंट आते थे सिर्फ, मेरे आने के बाद देखो सेंटर कितना चमक गया है। तो भूल जाते हैं प्रभु का प्रसाद है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, वैरायटी तरीकों से मैंपन मेरापन आता रहता है। तो इसको ही बाबा कह रहे हैं सर्व विकारों की विदाई। भाई वियोगी से योगी तक भी आ जाते हैं, योगी से सहयोगी तक भी आ जाते हैं स्टेज, लेकिन फिर अगर सर्वंश त्यागी नहीं है तो उसको संपूर्ण योगी नहीं माना जाएगा। और इसकी ही हमें चेकिंग करनी होती है। कई बार मन में प्रश्न आता है क्या चेक करें, सब तो ठीक तो चल रहा है हमारे जीवन में। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने जो जो श्रीमत दी है वो सब तो फॉलो कर रहे हैं, फिर क्या जाके भीतर में चेकिंग करें, क्यों हमको इतना एकांत का टाइम दिया गया, सब कुछ हमारे जीवन में ठीक चल रहा है। लेकिन वो मोटा मोटा, लेकिन सूक्ष्मता में जाकर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को पता चल जाएगा, कहीं लोभ के वशीभूत हैं हम, कहीं मोह के वशीभूत हैं हम, कहीं अहंकार के वशीभूत हैं। और दूसरा कि जब हम ऐसी धरनी पर आए हैं जिस धरनी पर वर्षों तक परमात्मा शिव का अवतरण हुआ है, वर्षों तक मम्मा बाबा ने, दादियों ने, दादाओं ने तपस्या की है, और ऐसे स्थल पर आने के बाद चूंकि सारे ही परिसर में वो तपस्या के वाइब्रेशन फैले हुए हैं, वो रूहानियत की खुशबू फैली हुई है, और वहां पर आकर योग युक्त हो जाना फिर भी इजी हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वातावरण का असर वार्तालाप पर पड़ता है, जैसा वातावरण वैसी हमारी वार्तालाप, वातावरण प्रभावित करता है। तो ऐसे ही कहते एक बार हुआ कि नारद जी गए, नारद माना क्या, कौन, और क्यों बाबा याद करते रहते हैं ये सब, कभी नारद को, कभी अजामिल को, कभी धुंधकारी को करते हैं ना बाबा याद मुरली में, क्यों, ये तो शास्त्रों की कहानियां है, क्योंकि यही का तो रेफरेंस है, क्योंकि शास्त्र कब लिखे गए, द्वापर में लिखे गए, कि जब संगम में जो हो रहा है वो प्रैक्टिकल उधर नहीं है, फिर संगम पे जो किया उसका फल भोगा सत्युग त्रेता में, वो भी वहां प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे समय पर लिखा गया है जब वो घटना घटनी रही है, लेकिन वहां पे क्यों लिखा गया, क्योंकि फिर त्रेता के एंड के बाद द्वापर से ही तो गड़बड़ियां शुरू होने लगी, और इसलिए वो कहानियां लिखी गई, अच्छाई का पक्ष बुराई का पक्ष, ऐसे किसी किसी चरित्र को उठा लिया, एक कंस दिखा दिया, एक कृष्ण दिखा दिया, एक रावण दिखा दिया, एक राम दिखा दिया, कौरव दिखा दिया, पांडव दिखा दिया, अच्छाई और बुराई, और कैसे अंत में किसकी विजय होने वाली है, अच्छाई की। तो यहां पर जो नारद उठाया गया है, नारद का मतलब क्या होता है, आज शीलु दीदी कह रही थी कि नारद माना क्या, क्या कहा शीलु दीदी ने सुबह, बोला ना कुछ शब्द, हाँ एक शब्द उन्होंने कहा, घर फिटाने वाला भी इधर की उधर। वास्तव में नारद का रोल वो नहीं है, नारद तो सृष्टि का प्रथम पत्रकार माना जाता है, इसीलिए पत्रकार लोग नारद जयंती मनाते हैं, वो पत्रकार है। हाँ ये बात क्यों कहने में आ गई, क्योंकि आज के पत्रकार भी शुरुआत कोई भी जब करता है तो ईमानदारी से करता है, अपना पेशा हम ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन फिर चलते चलते धन की लालच में, पद पोजीशन की लालच में, दूसरे जाए भाड़ में, मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरे को पोजीशन मिल रही है, गलत बोल दो क्या फर्क पड़ता है। और चूंकि नारद भी पत्रकार है, और इसलिए उसके साथ ये जोड़ दिया, वरना नारद का वो काम नहीं है। नारद ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है, और हम कौन है, क्या कहलाते अपने आप को, क्यों कहलाते, क्योंकि ब्रह्मा की संतान है। अगर नारद भी ब्रह्मा का मानस पुत्र है, माना कौन है, ब्रह्मा कुमार हुआ ना वो, हम क्या कर रहे बताओ, हमारा कौन सा काम है बोलो। हाँ, भगवान ने जो कहा है वो जाकर सबको सुनाना, किस बात में तुम्हारा हित है वो जाके समझाना, यही तो काम करता था नारद। झांझ उसके हाथ में है और वीणा भी है, जान बजाते वीणा बजा, हर पल उसके मुख में क्या है, नारायण नारायण नारायण, अर्थात मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उस नारायण जैसी श्रेष्ठता आपके जीवन में आए उसके लिए मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि स्वयं उसके जीवन का भी वही लक्ष्य था, विष्णु का परम भक्त है ना वो। और हम भी अगर देखे जाएं, देखा जाए संगम पर अगर हम हैं, तो ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है ना, वही हमारा लक्ष्य है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमें बनना है 16 कला संपूर्ण, और उस 16 कला संपूर्ण में प्रथम आत्मा वो है जो 16 कला संपूर्ण बन गई। तो जैसे स्कूल कॉलेजों में भी जब हम पढ़ते हैं, और अगर हमारा टारगेट है, लक्ष्य है कि मैं भी मेरिट लिस्ट में पास हूं, जैसे आज बाबा ने स्कॉलरशिप की बात कही, तो रहता है ना इंटरेस्ट, होता है ना कि हम भी ऊंचे से ऊंचे मार्क्स ले, स्कोर करें, तो फिर उतना क्या करते हैं, फिर जो पहले मेरिट में आए हैं ना, हमारे से पहले वाली जो बैच है, समझो मैं अभी 10th में हूं, मैं चाहती हूं कि मैं मेरिट में आऊं, मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स कमाऊं, तो पहली बैच जो होके गई है उसमें जिन्होंने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, थोड़ा सा उनके पास जाके क्या करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, भई आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे आपने टाइम टेबल बनाया था, कैसे हर सब्जेक्ट के लिए टाइम रखा था आपने, ताकि हम भी वैसा करें और हम भी मेरिट लिस्ट में अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेकर आए। तो ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है आत्मा को जैसे ऊपर घर से शुद्ध आई थी वैसे ही शुद्ध रूप तक पहुंचाना, अर्थात पूनम के चांद की तरह पूर्ण प्रकाशित, जिसको एक कहा 16 कला। और ब्रह्मा बाबा उसमें फर्स्ट नंबर निकल गए, और इसलिए फिर हमने कहा चलो हमें कैसे बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। लेकिन वास्तविक लक्ष्य 16 कला संपन्न, लेकिन वो पहले बन गया तो उसको हमने लक्ष्य बना दिया, तो वो भी तो ही कह रहा नारायण नारायण, तो हम ही है वो नारद। लेकिन हमारी ही कहानी, जैसे कहा ना, विकारों को विदाई भी दिया लेकिन फिर वशीभूत हो गया, यही हमारे ब्राह्मण जीवन में होता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बन सकती। आज देखेंगे तो ब्राह्मण फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंक है, वही वाला ब्राह्मण कुछ दिन के बाद कहां पे है, तो बोला लास्ट रैंक पे, और कभी कभी तो बोले लिस्ट से ही निकल गया। होता है नहीं होता है ऐसे? तो जैसे कहा कि कहानी आती है कि एक बार जैसे वो भ्रमण करता रहता है, हम भी क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारी एक जगह टिकती है क्या, भ्रमण करती रहती है, सेंटर पे भी रहते हुए जाएगी, फलाने गांव में गीता पाठशाला, उधर गीता पाठशाला, इधर गीता पाठशाला, इधर सब सेंटर, उधर सब सेंटर, भ्रमण ही तो कर रहे हम लोग। तो ये हमारी कहानी है, ठीक है। तो उसमें आता है वो जैसे भ्रमण करते रहता है, तो एक बार हिमालय की तरफ चला गया, और हिमालय की तरफ जाना मन ऊंचाई की तरफ जाना है ना, और वहां का वातावरण बहुत पवित्र, उसको एक बहुत सुंदर पवित्र गुफा मिल गई, पास में ही नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, उसका शीतल जल, पवित्र जल, और बहुत सुंदर वायु चल रही है। किसका मन नहीं लगेगा योग में, फिर वो भी बैठ गया वहां पे तपस्या करने, और वो हिमालय, वो गंगा जल किसका यादगार है, हिमालय माना ऊंचाई, मधुबन ब्राह्मणों के लिए सबसे ऊंचा स्थान है या नहीं है, सबसे ऊंचा, क्यों, क्योंकि शिव परमात्मा के अवतरण की भूमि है, और उसके साथ साथ का गंगा जल, गंगा बह रहा है, ज्ञान की गंगा सतत बह रही है, और का वायु भी सुंदर बह रही, कहा कि तपस्या के वाइब्रेशन कण कण में बह रहे हैं, रूहानियत की खुशबू लेकर वायु चारों तरफ फैली हुई है। और कौन ऐसा होगा जो कहे कि मधुबन में आकर भी योग नहीं लगता, कहेगा कोई ऐसा, तो लग जाता है, तो उसको भी योग की गहराइयों में छू पहुंचा। लेकिन उसमें आता है कि वहीं पर उसने विकारों को विदाई दी है, जब वो साधना करने बैठा है, तो उस साधना को हमेशा बताया जाता है ना, जब साधना करते हैं ऋषि मुनि तपस्वी, तो साधना भंग करने के लिए अप्सराएं आ जाती है, कभी उर्वशी तो कभी रंभा तो कभी मेनका, अर्थात लौकिकता का आकर्षण, साधना माना लौकिकता से अपने आप को दूर करना, और उसमें ये बाधा आना माना वापस लौकिकता का आकर्षण आना। तो कहां से टपक कर आती होगी वो रंभा और उर्वशी और मेनका, अप्सराएं, कामदेव, कहां से टपक कर आती है? तो देखो, हम जब तक ज्ञान में नहीं थे, हमको पता था यही सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है, इसको ही मैं बोला, इसको ही मेरा बोला। लेकिन बाबा के बने तो ये हमारे लिए सब कुछ एक था, शरीर। बाबा के बने, बाबा ने कहा ऐसे करो, एक है शरीर और इस एक शरीर के अंदर एक आत्मा, ये दो अलग चीजें हैं, मेरा अलग, मैं अलग। ज्ञान की गहराई में उतरे तो बोला भी इन दोनों के बीच में एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। गहराई में जाना, भाई स्कूल में जाते हैं, पहले बाल मंदिर पढ़ते हैं, KG 1, KG 2, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर मिडिल, फिर हायर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज, उसमें भी जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, माना ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो मास्टर हो गया, फिर PhD। पढ़ाई के लेवल्स होते हैं, सिर्फ बाल मंदिर तक थोड़ी बैठ जाना पड़ता है। हमें पढ़ाई करते 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 आगे बढ़ना है। तो पहला लेसन मिला, इन दोनों को अलग करो। फिर ज्ञान में उतरे गए रहे तो पता चला सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर माना ही मन का प्रतीक है। अब मन भी माना क्या, मन तो पता चल गया, लेकिन फिर बोला एक होता है बाह्य मन, एक होता है अंतर मन, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है ऊपरी मन, एक होता है नीचे वाला मन। तो इनको भी समझना पड़ेगा या नहीं? तो अब मुझे बताओ, बाह्य मन क्या होता है, अंतर मन क्या होता है? हाँ, वो हो गया अंग्रेजी अनुवाद, वो भाषा, भाई आपकी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में मन माना बाह्य मन, माना कॉन्शियस माइंड, और अंतर मन माना सब। पर इसका खुलासा, सिर्फ हम भाषा परिवर्तन करेंगे तो भी इतना नहीं समझ में आएगा, उसका खुलासा देखो। देखो देखो, सिक्का देखा है कभी? सिक्का बचपन में इसको उछाला था खूब, और कुछ खेल पाल करना होता तो चित और पट करते थे। हाँ, करते थे। तो पट किसको बोलते और चित किसको बोलते? चित ऊपर को बोलते हैं, मतलब हेड को बोलते हैं, और पट किसको बोलते हैं? टेल को बोलते हैं। और खुलासा, चित जिस तरफ चित्र है, हेड माना चित्र, और टेल माना पट, और पट पे लिखा जाता है। स्कूल में जब जाते थे तो श्याम पट पर लिखता है सर जी, गुरु जी, अंग्रेजी भाषा में ब्लैक बोर्ड, और मॉडर्न जमाना तो व्हाइट बोर्ड या फिर चार्ट, समझ में आ रहा है? और उस पट पर, जिस साइड पट है, उसमें अंक लिखा है, मतलब ये सिक्के की मूल्य कितनी है। अगर 10 का सिक्का है तो 10 लिखा होगा, 25 का सिक्का है तो 25। तो आखिर आंकड़ा जहां तक है वो लिमिट ही है ना, जहां तक हम गिन सकते वो लिमिट ही कहेंगे ना। कितना लिखा होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 500, 200, 1000, 2000, इतना ही लिखा होगा लिमिट। और इधर चित्र है, तो पट माना लिमिटेड, चित माना अनलिमिटेड। और ये पट माना मन, बाह्य मन में इस ब्लैक बोर्ड में चीजें कहां से आती है? ये इंद्रिया, आंखों ने देखा कहां गया? मन के पास गया ना। कानों ने सुना किसके पास गया? नाक ने सूंघा किसके पास गया? जीभ ने चखा किसके पास गया? स्किन ने स्पर्श को अनुभव किया किसके पास गया? मन के पास गया। अब मन तो लिमिटेड है, अगर ये वहां से चीज नहीं सरकेगी तो दूसरी नहीं आ सकती। आ सकती। एक थिएटर में हम जाते हैं, पर्दा लगा हुआ है इतना बाय इतना, फिक्स है ना, लिमिट है ना। लेकिन उस लिमिटेड पर्दे पर 3 घंटे की फिल्म, जो बाल्यकाल से मृत्यु तक की जीवन कहानी आ जाती है। लेकिन पर्दा कितना सा है, कितना लिमिट है, समझ में आ रही बात? तो ये जो पर्दे पे आ रहा था इतना, 3 घंटे का बाल्यकाल से जीवन के अंत तक, वो कहां से आ रहा था? वो पर्दे पे मैं फिल्म की बात कर रही हूं, हार्ड डिस्क में भर के रखा ना भाई, शूटिंग किया तो कैसेट में, सीडी में, हार्ड डिस्क में भर के रखा ना। और जब वो हार्ड डिस्क में भर के रखा, हमारी इमेज, मतलब जो भी उस फिल्म में है कैरेक्टर्स, वो भी उनकी इमेज इत्तु सी लकीर लकीर के रूप में, लेकिन पर्दे पर तो इतना लंबा व्यक्ति दिख रहा है, समझ में आ रहा है? और इसीलिए का वो अनलिमिटेड इसकी भेंट पे, हार्ड डिस्क, सीडी, कैसेट, वो क्या हो गई इसकी भेंट पे? अनलिमिटेड हो गई। वहां पे सारा स्टोर, पर्दे पे तो एक हटता है तब दूसरा आ रहा है, लेकिन उस हार्ड डिस्क में तो एक के बाद जो दूसरा आने वाला है, फिर तीसरा, वो सारा का सारा उसमें स्टोर्ड है। और वो जो स्टोर्ड है, जब अंतर्मुखी होकर बैठते हैं योग में, तो भाई बाह्य जगत का तो मैंने लेना बंद कर दिया। तभी तो कहा योग में बैठो, तपस्या करो, अर्थात क्या करो, बाह्य मुक्ता से हटकर अंतर्मुक्ता में आ जाओ। अंतर्मुक्ता की गुफा में, बाबा कहते हैं ना, उसमें बैठ जाओ। तो बाह्य जगत का तो अभी रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अंतर जगत में वो हार्ड डिस्क जो है, जो चित्त है, सुने हैं ना शब्द मन और चित्त, अभी खुलासा हो गया सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो हमारी भाषा में मन माना बाह्य मन और चित्त माना अंतर मन, पर बाह्य मन माना क्या वो भी क्लियर हुआ, और अंतर मन चित्त माना क्या वो भी क्लियर हुआ ना। अब जब मैंने बाह्य मुक्ता छोड़ी, तो बाहर से अभी डेटा अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत जाता है, गीत का सहारा लेते हैं, जाती है ना आवाज। और फिर अंतर्मुक्ता में हम चले गए, गए किस लिए थे, स्वयं को देखने के लिए, परमपिता से कनेक्ट होने के लिए, परंतु चित्त में बहुत सारा डेटा गया हुआ है, वो निकल निकल के सामने आता है, होता है नहीं होता है। इस जन्म में बाबा ने हमें ब्रह्मचर्य सिखाया है, इस जन्म में बाबा ने हमें सिखाया है कि विकारों से परे रहो, लेकिन 63 जन्मों का क्या हाल था, 63 जन्मों का क्या हाल था, इसमें ही लगे हुए थे, थे ना इसी में लगे हुए, तो सारा स्टोरेज है। तभी बाबा कभी कभी मुरली में वंडर खाता है, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, क्या कुदरत है। बाबा को जब बहुत वंडर होता है तो बाबा कुदरत शब्द यूज करते, क्या कुदरत, कि इतनी छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट और उसमें इतना सारा स्टोर। तो हमारे चित्त में वो सब कुछ क्या है? स्टोर है। और वो कहीं कहीं बीच बीच में से निकल निकल के मन रूपी पर्दे पर आ जाता है। और चूंकि बैठे कौन से वातावरण में थे नारद जी? पवित्र वातावरण में। और इसलिए क्योंकि होता क्या है, हम अभी जैसे हमने कहा ये आत्मा ये शरीर, इधर बीच में मन, मन का ये वाला हिस्सा मन, ये वाला हिस्सा चित्त। समझ में आ रही? सिक्का एक ही है लेकिन पहलू दो है, मन शरीर की तरफ है, चित्त आत्मा की तरफ। क्लियर हो रही बात? अब जब हम योग साधना करने बैठे, मतलब हमने क्या किया, ये मन तो बाह्य डेटा लेके आता है, लेकिन हमने बोला भी मैं अंतर्मुखी हो जाऊंगी, माना मैंने इसको यहां से ब्लॉक किया कि बाहर से डेटा लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस मन को मैं इस आत्मा में लगाने जा रही हूं, लेकिन यहां पे इधर चित्त है, समझ में आ रहा है ना? चित्त इधर है तो मैं उधर अपने मन को खींचने जा रही हूं, बीच में ये इधर फेंक देता है मन के पास। और मन जितनी भी इंद्रियां हैं जो डेटा लेकर आती है उसके पास, वो उनका स्वामी है। तो मन क्या हो गया? इंद्रियों के स्वामी को इंद्र बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो का इंद्रासन हिलने लगा, कहानियों में यही होता है, इंद्रासन, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, उसको डर लगा मेरा सफाया न हो जाए, क्योंकि हम उसकी चीज यूज ही नहीं कर रहे, हम जंप मार रहे आत्मा की तरफ। तो इसका सिंहासन डावाडोल होता है, वो चित्त से फटाफट असर भेजता है। लेकिन हमारी जितनी दृढ़ता होगी, वातावरण जितना पावरफुल होगा, वो हमें असर नहीं करेंगे। आएगा जरूर, लेकिन हम साक्षी होकर उसको देखते रहेंगे और वो वापस, जैसे पर्दे पर आया जरूर लेकिन निकल गया, वो हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सका, हमें अपने प्रवाह में बहा के नहीं लेके गया। कई बार होता है हम प्रवाह में आ जाते हैं, होता है ना, फिल्म आप देखते हैं कई बार देखो रोना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई मेरे जीवन में घटना घट रही है। हाँ हाँ, तो उस प्रवाह में अगर नहीं बहे, बस देखते रहे, साक्षी होते रहे, तो आखिर वो तो खत्म हो जाएगी ना। आप किसी को ध्यान नहीं दो, कितनी देर आपके पास खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा, उसको लगेगा मैं जिसके लिए आया हूं उसका ही ध्यान नहीं, मैं खड़ा रहेगा, करूं तो क्या करूं, हो गया नहीं, तो चले जाते और हम वापस आत्मा की तरफ अपना ध्यान टिकाते हैं। समझ में आ रही बात? इसी को कहा कि इंद्रासन हिलने लगा। तो इंद्रासन, इंद्र ने जाकर कामदेव को कहा जाओ तुम अपनी लीला करो, और कामदेव माना ही कामनाएं जाके उत्पन्न करो। यही तो होता है अंदर में, और क्या होता है, कुछ कुछ बातों की इच्छा होती है, अरे बाबा मेरा सेंटर अच्छा चलना चाहिए, कामनाएं आ जाती है ना। तो फिर उसमें बताया कि वो समाधि में सफल रहा। कामदेव भी जब वो समाधि से उठा है तो कामदेव ने आके उससे माफी मांगी कि कहीं मेरे से ये नाराज न हो जाए, पहले ही माफी मांग लो। तो जब माफी मांगी तो कई बार होता है ना कि कोई हमारे कार्य में दखल देवे तो हम उस पर क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। और नारद मुनि ने क्या किया, गुस्सा नहीं किया। तो कामदेव ने जाके न्यूज फैला दी, नारद मुनि तो काम जीत है, नारद मुनि तो क्रोध जीत है, नारद मुनि तो मोह जीत, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं आई थी, मोहित नहीं हुआ। स्वर्ग का लालच दिखाया गया, लोभ नहीं हुआ। कहा नारद तो मोह जीत है, नारद तो लोभ जीत है। अब नारद को आया अहंकार। तभी बाबा ने कहा सर्व विकारों को विदाई देने वाले, क्योंकि इन विकारों की आपस में क्या है, अच्छी खासी मिली भगत है। तुम एक चले जाओ, पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। तो अहंकार आया, और अहंकार आया कि कहानियों में बताते हैं कि भोलेनाथ के भी पास कामदेव आया था, तो भोलेनाथ का नेत्र खुल गया था, माना भंग हो गई थी उसकी समाधि, तो इसको लगा, और उसमें बताते कि उसने कामदेव को जला दिया। तो नारद को लगता है मैं तो शिवजी से भी ऊपर हूं, मेरी विजय तो शिवजी से भी, उसकी जो विजय से भी ज्यादा है। नहीं, मेरिट में हमने जिनसे मार्गदर्शन लिया था, भाई आपने कैसे पढ़ाई की थी, वो तो फिर भी मेरिट के लिस्ट में आया था ना, 15वें नंबर पे था, मैं तो सेकंड में आया हूं, मैं तो उससे भी आगे, होता है ना। इसको अहंकार आ गया, और गया जाके, अहंकार आया तो उसी के सामने जाके बखान करेंगे ना। गया शिव जी के पास, बखान किया। शिव जी ने कहा, क्योंकि आखिर उसके हितैषी है, उसने कहा ये बात मुझे बोली है पर नारायण के पास जाके नहीं कहना। और कई बार हम कहते हैं कि नहीं नहीं कहेंगे, पर प्रसंग कुछ ऐसे निकल गया था तो मेरी बात निकल के आ गई, तो उसको ये भी इशारा दे दिया कि प्रसंग भी निकले तो भी ये बात नहीं कहना, क्योंकि शिव जी समझ गए थे इसके अंदर क्या जगह है, अहंकार। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है ये प्रभु प्रसाद कहां बैठा है, वातावरण ने उसको सहयोग दिया है पूरा, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु प्रसाद का ये रिजल्ट है। उसको लग रहा है मैं सचमुच माया जीत बन गया हूं, और माया जीत बन गया हूं तो जगत जीत भी बनना है। जगत जीत तो वो है ना विष्णु जी, भाई उसी का राज्य है ना सत्युग में, तो अब जगत जीत भी बनने चलूंगा मैं। तो शिव जी मुझे मना कर रहे, ठीक है शायद मेरी विजय उनसे ज्यादा बड़ी है तो उनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। और वो लेकिन काफी समय के बाद विष्णु जी के पास गए, बहुत जल्दी नहीं गए, इंतजार कर रहे थे कि न्यूज तो फैल गई होगी, और चूंकि अब मैं उनसे भी बड़ा हो गया हूं तो बड़े व्यक्ति को तो पहले सामने वाला निमंत्रण देवे ना, तब जाए ना, हम क्यों जाए खुद। तो वो इंतजार था कि शायद मुझे अपने आप निमंत्रण देंगे, पर देखा निमंत्रण तो आया नहीं, हम ही चल देते हैं। चला गया, और चला गया तो पता तो पड़ गया था कि अहंकार का बीज पनपना शुरू हो चुका है, और अहंकार का बीज पनपना शुरू हो गया है तो उसका इलाज भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे शिव जी और ब्रह्मा बाबा ही तो हमारे क्या है, हितैषी है ना। हमको भले नहीं समझ में आए, लेकिन उनको तो समझ में आ रहा है, उस हिसाब से हमें गाइडेंस देंगे। वही काम उन्होंने किया, विष्णु जी माना ही वो आत्मा जो संगम पर ब्रह्मा रूप में होती है ना। तो हमको तो ब्रह्मा जी गाइडेंस देते हैं ना, तो गए विष्णु जी के पास, वहां तो भक्ति में मिक्स कर दिया है ना सब कुछ। और फिर विष्णु जी ने क्या किया, क्षीर सागर में लेते हुए, और हमेशा नारद जब भी जाते थे तो लेटे लेटे ही मिल लेते थे, लेकिन आज के दिन विष्णु जी अपनी शैया से उठे हैं, खड़े हुए हैं, उनके पास गए हैं, उन्हें गले लगाया है, फिर आसन देकर पास में ही बिठाया है, अंदर ही अंदर। इन तक मेरी खबर तो पहुंच चुकी है, मैं उनसे भी बड़ा हूं, तभी तो देखो आज मुझे कितना सम्मान दिए जा रहे हैं। और फिर उस लगा अपना बखान करने, और जब बखान करने लगा, हमेशा तो नारायण कथा कहता था और आज अपनी विजय गाथा कह रहा है। उसको समझ में आ गया कि कैसे अहंकार पनपता जा रहा है। और आज फिर विष्णु जी ने पूछ लिया, कब जाओगे? तब उसको धक्का लगा, भाई अतिथि को, आए हुए को ऐसा पूछा जाता है क्या, कब जाओगे? तो उसको फिर मन में आया, शायद मेरी विजय इनको भी सहन नहीं हो रही है, इसीलिए मैं जो बखान कर रहा हूं, उस बखान के समय भी उसके भी मुद्रा, मुख मुद्रा को देखा तो उतने प्रसन्न नहीं दिख रहे थे, थोड़े बेचैन से लग रहे थे। पूछा, क्या कुछ बेचैनी हो रही है आपको? नहीं नहीं, आप तब जाने वाले हो गए दिया। तो ये समझ गया। और फिर तो नारायण नारायण कहते हुए आखिर वो चला गया। विष्णु जी अपनी लक्ष्मी से कहते हैं, इसको अहंकार आ गया है। तो लक्ष्मी जी कहती, फिर जब आपको पता चल गया है इसको अहंकार आ गया है, तो उस अहंकार को और क्यों पाला पोसा आपने, इतना क्यों आपने उसको सम्मान दिया? उसने कहा कि जैसे फोड़ा होता है ना, शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर दवाई देता है, तो दवाई उसने दिया, किसने? शिव जी ने। पर इसने लिया थोड़ी, जो बोला गया था कि नहीं करना ये अपनी विजय गाथा ना, इसने तो किया, मतलब दवाई नहीं लिया ना, मतलब उसका फोड़ा, मतलब फोड़ा फुंसी नहीं होता है, समझ रही ना आपकी उड़ीसा भाषा में, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसे शरीर में फोड़ा फुंसी नहीं निकल के आता है, हाँ, मवाद भर जाता है, पीप भर जाता है, बॉइल, हाँ, तो दवाई ली नहीं तो वो सूखेगा कैसे, मतलब वो बढ़ते जा रहा है। अब आया नारायण के पास, वहां पर भी अहंकार दिखा और उसने और पाला पोसा। तो लक्ष्मी जी को आया कि तुमने फिर उसका पालन पोषण क्यों किया, वो तो उस अहंकार को आपने पानी और क्यों दिया? उसने कहा कि डॉक्टर के पास भी अगर दवाई दे डॉक्टर और हम दवाई न ले तो फोड़ा ठीक होने के बजाय बढ़ता है, और फिर बढ़ने के बाद हम उसी डॉक्टर के पास नहीं जाके दूसरे डॉक्टर के पास चले जाए तो दूसरा डॉक्टर जब देख रहा है तो ये तो काफी बढ़ चुका है, तो कहता है कि इसको ऑपरेशन से निकाल दो। लेकिन ऑपरेशन में भी तब किया जाता है जब बिल्कुल मवाद पूरा भर जाता है, अभी पूरा नहीं भरा है, पूरा भरने के लिए बोले मैंने उसको ऐसा। तो हम भी कितने कई बार भ्रम में होते हैं, हम ऐसे विकारों से ग्रस्त होते हैं, लेकिन किसी बड़ों ने हमको सम्मान दिया, हम समझते हैं, क्या समझते हैं, जैसे नारद ने समझा, समझ में आ रही है बातें? और फिर क्या हुआ, विष्णु ने क्या किया, नारायण ने क्या किया, इसको अहंकार आ गया है और इसको तोड़ना है, तो ये जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से जाएगा। उसी मार्ग पर विष्णु ने माया नगरी खड़ी कर दी, बड़े बड़े भवन, बड़ा सा राजपाट और स्वयंवर का आयोजन, और ये वो जब उस रास्ते से गुजर रहा है उसको दिख रहा है, और जब वो उसी रास्ते से गया था उस समय जंगल था, और जब वापस उसी रास्ते से आ रहा है तो भाई इतने में, इतने जल्दी में इतना बड़ा नगर कैसे खड़ा होगा, दिमाग चलाना चाहिए नहीं, नहीं। पर जब बोलते हैं विकारों से जब ग्रसित हो जाते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी, और उस भ्रष्ट बुद्धि में उस आकर्षण में आया, और उस आकर्षण में लोगों से पूछा, भाई ये क्या है, का शील निधि राजा है इस नगर का, इतना डेकोरेशन क्यों है? तो बोले उनकी कन्या है विश्व मोहिनी, उनका स्वयंवर का आयोजन है। वाह, कहां कामदेव को जीत कर आया है और यहां पे कामनाएं जागना शुरू हो गई। ये है अहंकार की रिजल्ट कि हमने जो प्रभु प्रसाद से मिला है उसको क्या समझा, मेरी अपनी ताकत से हुआ है, और उसमें आ गया अहंकार। तो जिस जिस को जीता था ना, उसने काम को जीता था, क्रोध को जीता था, लोभ को जीता था, मोह को जीता था, सब वापस आ गए उसके पास, सब वापस आ गए। पहले पहले मोह जागा, गया अंदर देखूं तो सही, कामना जागी, देखने में क्या हर्ज है। लोगों ने कहा, अरे तुम तो ज्ञानी तपस्वी, तुम क्यों नगर देखने जा रहे हो, देखने में क्या हर्ज है। गया देखा, फिर वहां पे विश्व मोहिनी जिसका स्वयंवर, राजा ने कहा आओ आओ बैठो, जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है उसका जरा हाथ देख लो, गुण दोष क्या, इसका होने वाला वर कैसे होगा। वाह वाह, तो उसको देखकर उसके रूप पर ही फिदा हो गया। राजन कह रहे हैं कि हाथ देखो, हाथ इधर है, पर और इसलिए जो देखा, जो वर्णन किया, उसमें अंतर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो ऐसे ही होता है। उसको लगता है इससे तो मैंने ब्याह करना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में लिखा था ये जिसको ब्याहेगी वो अजर अमर, ये जिसको ब्याहेगी वो संपूर्ण चराचर जगत उसकी सेवा में, ये जिसको ब्याहेगी उसको कोई हरा नहीं सकेगा युद्ध भूमि में। तो कहता ये तो मैं ही बन जाऊं, मैं ही बन जाऊं। फिर तो वहां से चल दिया और विष्णु जी को याद किया। अभी अभी तो मिल के आया था, उतनी दूरी जाने में तो टाइम चला जाएगा, इधर स्वयंवर निकल न जाए। दिल से याद किया, विष्णु जी वहीं उपस्थित हो गए, बोले कहो क्या बात है। कन्या है बहुत सुंदर है, तो क्या हमारा जैसा ब्याह हुआ तुमको भी ब्याह करना है क्या? हाँ हाँ ब्याह कर लेते हैं, तो क्या सहयोग चाहिए? कन्या बड़ी सुंदर है और विवाह माना दोनों की मैचिंग, पर मैं तो इतना सुंदर, थोड़ा सा टेम्पररी समय के लिए अपनी सुंदरता दे दीजिए मुझे, क्योंकि बिना मैचिंग के वो सुंदरी डालेगी कैसे वरमाला, जयमाला कैसे डालेगी। और फिर साथ में कह दिया आप जिसमें मेरा हित समझो, क्योंकि हरि हरि कहते हैं ना, पर हरि के शब्द के अर्थ बहुत होते हैं। एक शब्द हरि का विष्णु है, माना हरि शब्द का अर्थ विष्णु है, तो वानर भी है, तो सर्प भी है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो कहा हरि मुझ पर कृपा करो, और फिर ये भी कह दिया कि जिसमें मेरा हित समझो वैसा करना। का ठीक है, हरि का मुख दे देंगे, पर कौन से वाले हरि का, तो वो तो मैं डिसीजन लूंगा ना कि हित किस में है तुम्हारा। तो वानर का दे दिया, पूरा शरीर विष्णु जैसा, सिर्फ मुख, और चूंकि इसका ध्यान इधर तो दर्पण पे, क्योंकि हरि पे विश्वास था ना, क्यों दर्पण देखूं मैं, तो देखा ही नहीं, और इधर का तो दिखता है सब, तो उसको लगा मैं तो सचमुच हरि बन चुका हूं, और जाके बैठ गया स्वयंवर में, जिस गेट से वो आएगी उसी गेट पे सीट मेरी चेयर रहे, ताकि मेरे को ही देखे और मेरे पे ही जयमाला डाल के मैं विजेता बन के चला जाऊं। लेकिन जैसे ही वो आवे, ये तो बंदर मुख है, बंदर मुख है तो डालेगी कैसे, तो डाला ही नहीं। उस स्वयंवर की घटना तो फिर कहते कि स्वयं विष्णु राजकुमार बन के आए और उसके गले में उसने डाला, और इसकी हो गई इंसल्ट। मन ही मन बड़ा दुखी हुआ, और अभी दुखी हुआ ही नहीं था कि शिव के दो गण भी वहां बैठे थे ब्राह्मण वेश में। जब कोई ब्राह्मण भटक जाता है तो दूसरे दो ब्राह्मण उसको चेक करते रहते करते कि नहीं करते तो दो ब्राह्मण बैठे हुए थे शिव घर और उसने कह दिया, क्योंकि बेचारा व्याकुल तो हो गया था ना, स्वयंवर भी सफल नहीं हुआ, तो कहा नारद जरा अपना मुख तो देख लो, वानर बने पड़े हो। बेचारे को गुस्सा आया, फिर लेकिन गया बाहर, तालाब था उसमें देखा तो अरे मैं तुम वानर हूं, और उसको गुस्सा आई, उन दोनों गणों को, उन ब्राह्मणों को उसने क्या कर दिया, श्राप दे दिया। और उसके बाद देखा तो उसका मुंह वापस नारद जैसा बन गया। उसको फिर और गुस्सा आई कि हरि ने मेरे साथ किया क्या, अभी जाता हूं मैं उसके पास। और गया, रास्ते में मुलाकात हो गई, रास्ते में ही, क्योंकि वो वहीं से जा रहे थे, और देखा ये विश्व मोहिनी तो ये वही वाली है जो वहां पे स्वयंवर हुआ था, और देखते ही देखते वो लक्ष्मी में बदल गई। तो कहा अब विष्णु जी को, अपने उसी का ही तो भक्त था, आप तो सुंदरी लेके घूम रहे हो और मैंने कामना की तो मेरे साथ इतना खेल रच लिया, और गुस्सा आया उस पर, गुस्से में उनको भी, ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया और इसको भी श्राप दे दिया। वो सबको पता है मुझे वानर बनाया है, तुमको भी अगले जन्म में साधारण मनुष्य बनना पड़ेगा, मुझे स्त्री की व्याकुलता दी है, तुम भी स्त्री के लिए व्याकुल होंगे, और तुमने मुझे वानर बनाया, वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। क्रोध भी आ गया, तो सब आ गए वापस, काम भी वापस आ गया, लोभ भी, राजपाट मैं बन जाऊंगा विजेता, मोह सुंदरी के प्रति हो गया, क्रोध भी आ गया। उसका एकमात्र कारण प्रभु प्रसाद को प्रभु प्रसाद नहीं समझा, अपना समझ लिया। इतनी कितनी सारी हमारे जीवन में प्राप्तियां होगी ब्राह्मण बनने के बाद भी, हम अपने आप को चेक करें, कहां हम प्रभु प्रसाद को अपना मान लेते हैं। और फिर कहा कि अगर निरंतर योगी होंगे तो इन सब विकारों को विदाई देने की शक्ति मिलेगी। अब वो निरंतर योगी माना ही क्या, जिसको ही हमने पहले बोलकर आए, क्या बोलकर आए, पहले थे वियोगी, फिर बने योगी, फिर बने सहयोगी, और फिर अगर बनेंगे सर्वंश त्यागी तो कहलाएंगे हम योगी की संपूर्ण अवस्था तक पहुंचे हैं। और ये संपूर्ण योगी की अवस्था कि अर्थात मेरा योग इतना पावरफुल हो कि 63 जन्मों का जो कचरा पड़ा है चित्त में वो योग की अग्नि से भस्म हो जाए, और वो तब होगा जब मेरा योग बहुत बहुत पावरफुल होगा। और बहुत बहुत पावरफुल योग का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत पावरफुल योग का मतलब होता है शरीर को एक स्थान पर बिठाते हैं योग करने के लिए, यही करते हैं। इसलिए तो कई बार पूछते हैं ना भाई बहने, चलते फिरते योग अगर करें तो क्या जरूरी है बैठक वाला योग करना, कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं ना इसे। तो बाबा का उत्तर है मुरलियों से, दोनों सही है, चलते फिरते योग भी, बैठक वाला योग भी। चलते फिरते योग से आप अपने आप को निगेटिव से, व्यर्थ से बचाकर रख सकते हो, माना नया कचरा अंदर नहीं डाल सकते हो, लेकिन पहले वाले कचरे को साफ नहीं कर सकते हो। पहले वाले कचरे को भी साफ कर सको उसके लिए बैठक वाला योग, और उस बैठक वाले योग में भी बीज रूप स्थिति वाला योग। और बीज रूप स्थिति वाला योग माना क्या, बीज की तरह हो जाना। और बीज की तरह हो जाना मतलब बीज अगर धरती पर पड़ता है तो उसमें से दो पत्ते निकलते हैं, फिर और आगे 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 उसका विस्तार हो जाता है, लेकिन अगर धरती पर पर ही न पड़े, वो बीज बीज रूप में ही रहेगा। अर्थात मेरा योग पावरफुल उसको कहेंगे जब मेरा मन भी शांत हो जाए। मन बोल रहा है माना कुछ निकल रहा है, मन बोल रहा है माना कुछ निकल रहा है, समझ में आ रही बात। बुद्धि कुछ डिसीजन ले रही है, संशय ले रही है, माना कुछ अभी धरती से कांटेक्ट है। धरती से कांटेक्ट होने पर ही बीज से कुछ निकलता है। ऐसे ही बीज ऐसे बिना धरती के पड़ा रहे, सालों साल पड़ा रहे, उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला है। लेकिन धरती का अगर कांटेक्ट, आप देखो कई बार हम अंकुरित करते हैं ना, कितने बड़े बड़े वो क्या बोलेंगे उसको, सल्ला बोलते क्या बोलते हैं, और कई बार तो मैंने अंकुरित भी नहीं किया है, ऐसे ही मूंगफली का दाना कहीं पड़ा है, लेकिन कहीं से उसको मॉइस्चर नमी मिल चुकी है, अपने आप उसमें से निकल रहा है। होता है नहीं होता है, धरती में भी नहीं डाला है अंदर, जो मिट्टी में डालना था नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है। धूल मिट्टी थोड़ी उसको लग रही है और थोड़ी सी नमी उसको मिल रही है और यूं निकल के आ रहा है। आप आलू को देखते होंगे कई बार निकलता है, निकलना माना धरती का कांटेक्ट है, कुछ तो भी नमी, कुछ इस पृथ्वी का कुछ तो भी उसको मिल रहा है। तो बीज रूप स्थिति माना मन भी शांत हो जाए, बुद्धि भी शांत हो जाए, अर्थात उसको याद करते करते हम खो जाए। खो जाने वाली स्थिति वो होती है जहां से कुछ निकलना बंद हो जाता है। इतना पावरफुल योग होगा उस स्थिति में जाकर के परमात्मा से आने वाला उसके वाइब्रेशन का प्रवाह, उसके किरणों का प्रवाह, उसकी शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा पर, बीज रूप माना बीज रूप बाप के पास में बैठे रहे हम, धरती पे नहीं रहे हम, नारी बात, बीज रूप स्थिति बीज रूप बाप के पास बीज रूप बनकर बैठ जाए तो उससे निकलने वाला वाइब्रेशन का प्रवाह, उससे निकलने वाले किरणों का प्रवाह, शक्तियां वो उस पर काम करेगा, उस बीज पर, और उस बीज पर काम करके उसके 63 जन्मों के कचरे को साफ करेगा, अपने वाली स्थिति पर उस बीज को लेकर आएगा। ये काम बाप का है। तो इतना समर्पण, इसको कहते समर्पण, मन बुद्धि चलाया माना समर्पण अभी नहीं है। तो ऐसी बीज रूप स्थिति आप बना सको, इसके लिए आपको ये भट्टी मिले, अपनी चेकिंग कर सको, इसके लिए आपको ये भट्टी मिली, इसके लिए आपको एकांत के पल दिए गए कि खुद की चेकिंग भी करो और इतनी पावरफुल बीज रूप स्थिति बनाओ कि जिस स्थिति में अंदर का 63 जन्मों का कचरा जलकर भस्म हो जाए और मैं बाप समान वाली स्थिति में पहुंच जाऊं। हो सकता है नहीं हो सकता है ऐसा? हाँ, तो ये वाला अभ्यास हमें करना है, और सिर्फ इस भट्टी में नहीं, ये भट्टी तो एक स्टार्टर है, हाँ, ट्रेनिंग सेंटर है। जब साइकिल चलाना सीखना होता है तो भरे हुए रोड में नहीं सीखते हैं, खाली रोड में सीखते हैं, और खाली रोड में सीखकर जब हाथ बैठ जाता है, हाँ, माहिरता आ जाती है फिर भरे रोड में जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने आपको ये स्वर्णिम अवसर दिया कि बैठो इस वातावरण में जहाँ का वातावरण भी आपको सहयोग देगा, ज्ञान गंगा भी बहती रहेगी कि जिस ज्ञान गंगा के आधार से भीतर क्या चेक करना है वो भी हमें समझ में आएगा और वो चेकिंग करके सब कुछ बाबा को समर्पण कर दे, बीज रूप स्थिति बनाए, बिंदु बनकर बिंदु बाग के पास परम धाम में बैठ जाए। तीन बिंदियों का तिलक लगाने के लिए बाबा कहते हैं, ब्राह्मण माना ही तिलक लगाना होता है। तो बाबा ने सबको सूक्ष्म कर दिया, एक आत्मा मैं बिंदी, दूसरा परमात्मा मेरे बिंदी और तीसरा ड्रामा की हर सीन को बिंदी। तभी तो बीज रूप स्थिति बनेगी, तभी तो बीज रूप स्थिति बनेगी। और उस बीज रूप स्थिति में वो बाबा का काम है मेरा कचरा साफ करना और अपनी जैसी स्थिति में मुझे लेकर आना, क्योंकि ये डॉक्टर का काम होता है। समर्पण कर दो, एनेस्थीसिया देके आपके अंदर जो गंदगी है उसको निकाल देना। तो समर्पण करना पड़ता है अपनी बॉडी को उसके आगे, और तुम इतने शांत नहीं रह पाओगे इसके लिए एनेस्थीसिया दे देता है। समझ में आ रही ना बात? तो बाबा भी यही कहते हैं, बिंदु बन बिंदु बाप के पास आकर परम धाम में बैठ जाओ। तो बाप समान स्थिति बनना सहज हो जाएगा। और इसी आधार से जो काभट्टी का थीम है, महसूसता द्वारा संपूर्णता, उस थीम को हम अपने जीवन में हासिल कर सकेंगे। तो अभी और भी समय है आपके पास इस भट्टी में, आज का दिन है, कल तो प्रस्थान की तैयारी। तो ऐसे संकल्पों को दृढ़ करें, वो स्थिति को अनुभव करें, आत्मसमर्पण करें बाबा को। और जैसे बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, मदद के हजार कदम बाबा के, और बाबा आपके इस पूरे ब्राह्मण जीवन की यात्रा में मदद करते रहेगा और अवश्य ही आप समान हम सबको बना के ही रखेगा। ओम शांति।
ओम शांति। इंदिरा दीदी को बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतना अच्छा भट्टी हम सभी को इतना मेहनत करके करवाया, अभी भी इतना अच्छा पावरफुल क्लास जो आपके मनन चिंतन का महसूसता द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए कितना अच्छा आपने क्लास कराया, हम सभी को बहुत बहुत भरपूर किया। और आपका जैसे धारणायुक्त जीवन है और शांत मूर्त जीवन है, ऐसे ही हम सभी को बहुत प्रेरणा मिली आपसे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।